ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुक्ष भ्रमरादिभिः। हरे कृष्ण। तो सुबह के सत्र में हम लोग सुन रहे थे, श्री भगवान जब पुतना के गोद में आ गए और उसका स्तन पीने लगे तो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उनको लेकर आकाश में उड़ गई। लेकिन श्री भगवान मानो एक साधारण बच्चों की तरह एक क्षुधा से दूध पीना चाहते हैं, चाहे वो माँ का स्तन हो या मौसी का हो, किसी का हो, भूखा बालक को दूध चाहिए। स्तन पकड़वा दी, पीने लगे। एकदम अबोध बच्चे की तरह पुतना के स्तन को पकड़ लिए। लेकिन भगवान भगवान है, किसी भी अवस्था में उनका ऐश्वर्य उनके साथ रहता है। यद्यपि वो बालोचित लीला कर रहे हैं एकदम मासूम बच्चों की तरह, लेकिन जो वस्तु शक्ति है वो तो उनके साथ ही है। भगवान की भगवत्ता सदैश्वर्य पूर्ण, सबसे बड़ा बलवान, सबसे सुंदर, सबसे यशस्वी, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विरक्त इत्यादि जो उनके पास छह ऐश्वर्य है वो तो उनके साथ है और स्वरूप में है। उसको वस्तु शक्ति कहते हैं। भगवान मतलब सदैश्वर्य परिपूर्ण, सबसे बड़ा बलवान, जिसके बल की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अनलिमिटेड बल, किसी हथियार का प्रयोग नहीं करना है। कोमल अधरों से, ओष्ठ से पुतना के स्तन को पकड़े और मार डाले, हाथ भी नहीं लगाए, केवल ओठ से पकड़े और मार डाले। इतना बड़ा बलवान कोई हो सकता है? कल्पना कर सकते हैं? असंभव है। तो इतने बड़े बलवान श्री भगवान पुतना के स्तन पान के साथ उसके प्राण को पी गए। और जब पुतना का शरीर जमुना के तट पर गिरा तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत विशाल शरीर था वह शरीर, उसका हाथ जहां तक गया उत्तर दिशा में तो उसको कहते हैं वही हथरस है। मथुरा के बगल हथरस तक उसका हाथ फैला था, बहुत विशाल शरीर था। तो उस शरीर के ऊपर बालक सुरक्षित है। जब गोपियां वहां पहुंची और बालक को गोद में लेकर आई, कहां, जहां यशोदा और रोहिणी थी, अत्यंत स्नेहमय जननी अपने बालक के लिए कितना दुखी होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो यशोदा और रोहिणी के पास लेकर आई। यशोदा रोहिणी भ्यास्ता समम बालस्य सर्वतः। सुखदेव गोस्वामी बड़ी ही सावधानी के साथ वर्णन करते हैं कि ऐसे यशोदा और रोहिणी तो भगवान की जननी थी, लेकिन समम बालता है माने उनके साथ रहने वाली गोपियां, ता माने जो गोपियां कृष्ण के सेवा में लगी हुई थी उनको पकड़ कर लाई, वे भी ता समम, समम मतलब यशोदा और रोहिणी के समान ही स्नेह करती थी कृष्ण से। तो ये लोग बालस्य सर्वतः का अर्थ है उस बालक के लिए सब प्रकार से जैसे भी हो रक्षा करना चाहती हैं। रक्षां विदधिरे सम्यक, सम्यक रूप से जिस तरह हित हो सके वैसा हित करना चाहती हैं बच्चे के। तो उनके पास सबसे प्रथम प्राथमिक चिकित्सा क्या है? गाय के पूंछ का चामर डुलाना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो गो पूंछ का चमर बनता है गाय के पूंछ से बड़ा ही पवित्र होता है, और वहाँ तो ऐसे जो आरती में चामर का प्रयोग होता है वो नहीं था, डायरेक्ट गौशाला के गाय का पूंछ लेकर उनका झाड़ लगा रही थी, चामर डुला रही थी। भूत प्रेत छू दिया है, और अभी मरे हुए एक राक्षसी का स्पर्श करके आई हैं, लाश छू कर आई हैं। उनको ये भी ध्यान अभी नहीं है कि हमको भी स्नान कर लेना चाहिए, अभी बच्चे के ही चिकित्सा में लगी हुई है। तो रक्षाम विदधीरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमरा देवी आदि भी का अर्थ है कि और भी, केवल चामर ही नहीं डुलाई, गाय के खीरक में ले जाकर बच्चे के शरीर को गाय के पूंछ से झाड़ लगाई कि इसके ऊपर भूत प्रेत पिशाची राक्षसी का जो स्पर्श हुआ है इससे बच्चा की रक्षा हो सके। सब तरह से सब अंगों की रक्षा करने के लिए, सब जगह, सिर पर, हाथ पर, पैर पर, छाती पर, मुंह पर, सब जगह गाय के पूंछ का स्पर्श कराई, सम्यक रूप से रक्षा करना चाहती हैं। और उनके मन में विश्वास है कि बच्चे की रक्षा इस गाय के पूंछ के स्पर्श से हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में यहाँ इन स्त्रियों के, इन गोपियों के व्यवहार से हम देखते हैं कि गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की रक्षा, गाय की सहायता से समाज की रक्षा हो सकती है। वे जानती थी कि बच्चे अनेक खतरों से जूझ रहा है, बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है। वे एक साधारण मासूम बच्चा है 6 दिन का, और इतना बड़ा खतरा का सामना करना पड़ा, तो इसको बचाने के लिए गाय के शरण ली। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गो रक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन दुख की बात है कि लोग इस बात को भूल रहे हैं। भगवद गीता में श्री भगवान 18वें अध्याय में गाय रक्षा पर जोर देते हुए कहते हैं, कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश कर्म स्वभावजम। जो चतुर वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वैश्य के कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, खेती, गाय की रक्षा और व्यापार, ये वैश्य का कर्म है, स्वाभाविक नेचुरल कर्म है, गाय की रक्षा होनी चाहिए। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं, अपने घर द्वार की लिपाई पुताई करते हैं, बहुत स्वच्छ साफ उनका आंगन होता है घर, क्योंकि गाय के गोबर से घर लिपते हैं। और गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडा तैयार करके ईंधन की तरह उसका उपयोग करते हैं, उसे भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उनके पास पर्याप्त अन्न होता है, और उस उत्पादन में भी, अन्न उत्पादन में भी गाय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं उनके गोबर खेतों में डाल करके उनका उत्पादन बढ़ाते हैं, कोई केमिकल नहीं, कोई यूरिया नहीं, पवित्र गाय के गोबर। उनके घर भी गोबर से लिपा जाता है, उनके खेत में भी गोबर होता है, और इस तरह उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार होता है। और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध, दही, घी इत्यादि पदार्थ होते हैं खाने के लिए भी, और उसके उसका बिजनेस करके, उसको बेच करके आर्थिक समस्याएं भी हल की जाती हैं। मात्र गो रक्षा से ग्रामीण लोग बड़े शांति से रहते हैं, और यहाँ तक कि गोमूत्र, गोबर के औषधीय उपयोग भी आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बात को भारतीय गृहस्थ भूल रहे हैं, प्रभुपाद क्षोभ कर रहे हैं। इसके बाद आगे के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गो रजसार्भकम् रक्षाम चक्रोश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। फिर इसके बाद गाय के पूंछ से केवल झाड़ ही नहीं लगाया गया, गोमूत्र से अभिषेक किया गया कृष्ण का। कहीं उसका हाथ लग गया हो, मुंह लग गया हो, दांत, राक्षसी का विषैला दांत कहीं पकड़ ली हो, तो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक औषधि है गोमूत्र, कहीं कोई खतरा ना हो आगे, इसलिए गोमूत्र से अभिषेक कराई। ऐसा नहीं कहीं कहीं नहीं लगाना है, पूरा शरीर गोमूत्र से स्नान किया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से स्नान कराई और पुनः गोरज सार्वकम। फिर उस अर्भक कहते हैं छोटे मासूम बच्चे को, जो महीना दो महीना दस दिन पांच दिन का है उसको अर्भक कहते हैं। अर्भक किसी बच्चे को कहते हैं, अपना बच्चा हो दूसरे का हो, छोटे बच्चे को अर्भक कहते हैं। तो उस अर्भक को पुनः फिर से गोरज, गाय के खिरक से, गौशाला का मिट्टी लेकर जहाँ गाय रहती हैं उस मिट्टी से सारे शरीर में लेप की, गोमूत्र से स्नान कराई, गोरज लगाई, रक्षाम चक्रुश्च सकृता। इसके बाद अब और रक्षा करने के लिए विशेष रूप से गाय के गोबर लेकर द्वादश अंगेश नाम भी, श्री कृष्ण के शरीर पर उनके नामों का उच्चारण करते हुए तिलक लगाई। कहाँ? बारह अंगों में। या हम लोग तिलक लगाते हैं वैसे बारह अंगों में तिलक लगाई और उन तिलक के साथ भगवान का नाम उच्चारण की। नाम भी मैंने केवल तिलक नहीं लगाई, गोबर का तिलक ललाट पर, नाभि पर, वक्षस्थल पर, कंठ में, दाहिने कुक्ष में, दाहिने भुजा पर दो जगह, फिर बाएं तरफ बाएं कुक्ष में, फिर बाएं भुजा पर दो जगह, फिर पिष्ट पर ऊपर नीचे, बारह अंगों में तिलक लगाई और तिलक लगाकर उनमें भगवान के नाम का आवाहन की। ओम श्री केशवाय नमः, इस तरह से उच्चारण करते हुए नाम भी कृष्ण के नाम से कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। यह एक अद्भुत बात है। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादश अंगेशु नाम भी, यहां स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि भगवान के रक्षक भगवान का नाम है। भगवान के रक्षा में भी भगवान के नाम का प्रयोग किया जाता है, उनके नाम से उनकी रक्षा हुई। अब इससे बढ़कर नाम का महात्म्य क्या हो सकता है? जो नाम भगवान के रक्षा में उपयोग किया गया वह नाम हमारे जैसे कीट पतंग साधारण लोगों की रक्षा कर ले, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इस प्रकार नाम की महिमा गाते हुए अनेक जगहों पर भगवान से तुलनात्मक जब वर्णन किया जाता है तो नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहां नाम के द्वारा कृष्ण की रक्षा की जा रही है। रामचरितमानस एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, उत्तर भारत में भगवान राम के लीलाओं से भरी हुई। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी वर्णन नहीं कर सकते। राम एक तापस दियतारी, एक तापस, एक तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार राम किए। नाम को टिखल कुमत सुधारी, करोड़ों दोनों स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। और स्त्री गौतम की नारी, एक तापस की स्त्री का उद्धार अपने चरण के स्पर्श से कर दिए, जो पत्थर बनी हुई थी पति के श्राप से वो पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त की। लेकिन जो कुमती रूपी स्त्री सबके दिमाग में पड़ी हुई है, कृष्ण विमुख कर दी है, वह कुमती को नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों करोड़ों खराब मति का सुधार हुआ है नाम के द्वारा। किसी भी तरह से इस नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, किसी भी तरह। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। प्रश्न होता है कि इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास एकदम स्पष्ट कहते, कैसा हूं? महाप्रभु भी इस बात को कहते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कभी भी इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव से उच्चारण करें या कुभाव से या क्रोध में या आलस में, किसी भी तरह नाम का उच्चारण करें, यह मंगल करने वाला है। नामना मकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्ता पिता नियमित स्मरणे न काल एता दिशि तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मे दिश मिहा जनिनानुराग। महाप्रभु क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने अपने नाम में अनंत शक्तियां भर दी हैं, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज तक इस नाम के प्रति कोई रुचि नहीं उत्पन्न हुई, न इसके स्मरण करने का नियम है न काल है। कोई नियम नहीं, कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। खाई ते सुई ते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। यह नाम अपने आप में परम दिव्य परम श्रेष्ठ है। और गोस्वामी तुलसीदास एक तुलनात्मक वर्णन करते हैं कि जब लंका जाने की तैयारी हुई रावण से युद्ध करने के लिए, तो समुद्र में पुल बांधना पड़ा, तो राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम किम्ह न थोरा। उस समुद्र में, समुद्र के ऊपर पुल बांधने में राम ने बहुत परिश्रम किया, करोड़ों करोड़ों बंदर भालू की सेना जुटाए, राम भालु कपि कटुक बटोरा बहुत ज्यादा सेना जुटाए, सेतु हेतु श्रम किम्ह न थोरा बहुत ज्यादा श्रम किए, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मनमाही। यह निर्णय आप सज्जनों के ऊपर छोड़ देता हूं, आप ही निर्णय लीजिए कि समुद्र में पुल बांधने के लिए राम को बहुत परिश्रम करना पड़ा, और नाम का उच्चारण करने पर भव सिंधु में पुल नहीं बांधना पड़ता है, सुख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुख जाता है, कोई पुल की जरूरत नहीं। करहूं विचार सुजन मनमाही। हे सज्जनों, आप विचार कीजिए कि नाम बड़ा है कि राम, कहां कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और यहां तो सुखदेव गोस्वामी और ज्यादा वर्णन कर दिए, रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादा संगेश नाम से, नाम भी, नाम के द्वारा कृष्ण की भी रक्षा की जाती है, इतना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान की रक्षा नाम से करते हुए उनके द्वादश अंगों में तिलक लगाकर आगे नारायण कवच के द्वारा रक्षा करती हैं। फिर वर्णन है, गोप्य संस्पृष्ट सलीला अंगेशु करयो पृथक न्यस्यात्मन्यथ वालस्य बीजन्यासमक अकुर्वत। तो इस प्रकार गोपियां फिर आचमन की, बाद में उनको ध्यान आया कि हम लोग लाश छिव कर आई हैं, अब फिर से स्नान आदि करके वस्त्र बदल कर फिर से कृष्ण की रक्षा के लिए उपाय करने लगी। गोप्या संस्मिष्ट सलीला, सलीला जल के द्वारा अंगेशु करयो पृथक, अलग अलग अंगों पर करन्यास आदि के लिए न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन न्यासम अकुर्वत। फिर अज आदि जो बीज मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास करन्यास आदि की, और फिर बालक के अंगों में भी, पहले आचमन करके अपने को पवित्र की, इसके बाद फिर बालक के लिए भी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि न्यास मंत्र में जब अपने शरीर को पवित्र करना होता है तो दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उसको पी कर आचमन किया जाता है। प्रभुपाद को बहुत कुछ समझाना पड़ा लोगों को। ऐसे तो यहाँ भारत में ब्राह्मण समाज और जो संस्कारित लोग हैं जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद बतलाते हैं शरीर को कैसे शुद्ध करना है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु नाम है, विष्णु मंत्र है, उसके द्वारा आचमन किया जाता है, ओमकेश्वराय नमः गोविंदाय नमः इत्यादि। और जो पवित्र करने का मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थाम गतिव पिवा जस्मरित पुंडरीकाक्ष सर्व बाह्याभ्यंतर सूची। तो उसमें केवल भगवान का नाम उच्चारण किया गया है और भगवान के नाम और भगवान के स्मरण से ही बाहर भीतर की पवित्रता होती है। तो इस प्रकार अंग न्यास करते हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न मंत्र हैं। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध होने की विधि जानते थे उस समय। इस विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया, फिर कृष्ण को शुद्ध किया। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए एक वैश्य परिवार में जन्मी हुई गोपियां इस बात को जानती हैं, कितना संस्कारित समाज था। ब्राह्मणियां नहीं है, गोपियां हैं, वे भी कन्यास की, किसी ब्राह्मण को बुलाकर नहीं कर रही हैं, स्वयं कर रही हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी गोपियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किए हैं, क्यों ऐसा कर रही थी, क्या कारण था, इतना मंत्र उच्चारण की, इतना पाठ की, सब चीज कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या लक्ष्य था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति प्रणय बद्धा भी गोपभी कृतरक्षणाम। क्या ब्राह्मणों की तरह, एक आचार्य एक टीकाकार लिखते हैं कि ब्राह्मणों को आमंत्रित कराया जाए पूजा पाठ के लिए तो अपेक्षा दक्षिणा की होती है, जितना देर तक पूजा पाठ कराइए उतना बड़ा दक्षिणा चाहिए, शॉर्ट में कराना है तो कम पैसा में भी हो सकता है, विस्तार से कराने के लिए तो विशेष दक्षिणा चाहिए। तो गोपियां इतना बड़ी पंडितानी की तरह सब करा रही हैं, तो इनको क्या चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बस उनका हृदय कृष्ण से बंधा हुआ था, कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए इति प्रणय बद्धा भी गोप भी कृत रक्षणा, इनको किसी दक्षिणा की अपेक्षा नहीं थी, ये ऐसे ही स्नेह बस फ्री कर रही थी। तो ऐसे ही स्नेह बस कर रही थी। अंगन्यास तथा कन्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है, प्रभुपाद सिखा रहे हैं, मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है, एक एक चीज बतलाना पड़ेगा। और फिर जल पीकर ओम नमः अजस्तांग्रिम अव्यात मम मनो मणिमाणम तव जाननी अव्यात इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं, भारतीय संस्कृति के लोग जानते हैं, लेकिन कहते कहते प्रभुपाद फिर क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय भी संस्कृति को खो रहे हैं, भारतीय गृहस्थ यह भूल चुके हैं कि किस तरह अंग न्यास और कन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उन्नत ज्ञान नहीं है, क्या किया जाए। इसलिए इसकी इसके प्रचार की जरूरत है, लोगों को वैदिक संस्कृति सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार स्वयं को पवित्र की कन्यास और अंगन्यास के द्वारा। और एक आचार्य तो लिखते हैं कि वे लोग जल्दीबाजी में आकर तुरंत ये सब चालू कर दी, लेकिन बाद में याद आया कि हम लोग राक्षसी का शव छू कर आई हैं, और ये तो पहाड़ी तो थी नहीं कि वो जहाँ असंस्कारित लोग कुछ संस्कार जानते नहीं, जंगल पहाड़ में रहते हैं तो वे कुछ भी करते हैं, लाश जलाकर वैसे बिना कपड़ा बदले बिना नहाए धोए खाते पीते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वे संस्कारित हैं। इसलिए स्वयं को पवित्र की और इसके बाद फिर कृष्ण के उपचार में लग गई। आगे प्राथमिक उपचार करके और फिर कन्यास करते हैं, इसके बाद भगवान के पवित्र नाम के द्वारा रक्षा करते हैं, जिसको भागवत में नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए भगवान के दिव्य नाम के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक समय, प्रत्येक काल में अपनी रक्षा की प्रार्थना की जाती है। बहुत प्रसिद्ध है नारायण कवच, जिसको विश्वरूप जी ने इंद्र के लिए सुनाया था। तो ऐसे ही ये नारायण कवच गोपियां भी जानती हैं। तो अंगन्यास और कन्यास करके फिर वे कहने लगी, नारायण कवच का उच्चारण करती हैं। अव्या दजंग्री मणिमांस तव जान थोरु यज्ञो च्युत कटितटम जठरम हयाश्य हित के सवस्तदुरा इसैनस्तु कंठम विष्णु भुजम मुख मुरु क्रम ईश्वरः कम। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, भगवान अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, और ईश मुख की, और ईश्वर सिर की रक्षा करें। सब नाम कृष्ण का ही है, जो भी नाम का प्रयोग कर रही है वह सब कृष्ण का नाम है। कृष्ण के नाम के द्वारा, कृष्ण के भिन्न भिन्न स्वरूप के द्वारा कृष्ण की रक्षा करने की बात कर रही है। चक्र ग्रतः सह गदो हरिरस्तु पाश्चात त्वत्पार्श्वयोर् धनुरसी मधुहाजनस्य कोणेषु शंख उरुगाय उपयुर्पेन्द्र तार्च्य छितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। चक्रधर भगवान तुम्हारे आगे खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा करें, गदाधारी श्री हरि पीछे, और धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर और हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा करें। सब कुछ वही हैं, हलधर श्री बलराम जी हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वे तुमको पृथ्वी पर रक्षा करें। इंद्रियाणि हि केशः प्राणं नारायणोऽवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनोजोगेश्वरोऽवतु। भगवान ऋषिकेश इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की, और जोगेश्वर मन की रक्षा करें। देखिए, शारीरिक कमजोरी रोग के द्वारा हो जाता है वो तो एक बात है, लेकिन सूक्ष्म अंग की भी रक्षा होनी चाहिए। स्थूल शरीर, हाथ पैर आंख आदि तो जरूरी है ही, लेकिन मन भी ठीक से काम करे इसके लिए भी जरूरी है भगवान से प्रार्थना। मन की रक्षा भगवान जोगेश्वर करें, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की, या जोगेश्वर मन की रक्षा करें। ये बड़े बड़े योगी जति लोग प्राणायाम आदि साधन करके, योग करके अपने मन को एकाग्र करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, और वे यम नियम का पालन करते हैं, बड़ी कठोरता से प्राणायाम आदि करके चित्त को समाहित करते हैं, और फिर ध्यान धारणा समाधि की ओर स्थिर करते हैं अपने मन को, तो उनको योगी कहा जाता है। और ऐसे अनंत योगियों के भी ईश्वर हैं जोगेश्वर भगवान। तो भगवान जोगेश्वर तुम्हारे मन की सुरक्षा करें, मन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। शरीर के सुरक्षा से भी बढ़कर मन की सुरक्षा है। अगर मन विक्षिप्त है या विषयों की लालसा से परेशान है, तो ऐसे मन में भगवान का भजन नहीं हो सकता, भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। हम कुछ न कुछ अंश में मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। मानसिक रोग है विषयों की लालसा, भोगों की कामना, इसको मानस रोग कहते हैं। इसका इलाज इन हॉस्पिटलों में नहीं होता। जो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, मन कभी विक्षिप्त होकर पागल की तरह कुछ बोलता है तो उसकी कुछ चिकित्सा कर देते हैं, लेकिन वास्तविक रोग है मन में विषयों के लालसा, और इसके कारण व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और विविध प्रकार की योजना बनाता है और उसी योजना को पूरा करने में लगा रहता है। कृष्णेतर विषयों की कामना मन में गूंजती रहती है, ये बहुत बड़ी मानस रोग है। और ऐसे ही मानस रोग में पता नहीं चलता है व्यक्ति को, इसी मानस रोग के परिणाम है काम, क्रोध, लोभ, ये जो नरक के गेट हैं। मन में विविध भोग भोगने की जो लालसा है उसको काम कहते हैं, और जब वो कामना इच्छा के अनुसार पूर्ति होने लगती है तब लोभ बढ़ता है। लोभ, और चाहिए और चाहिए। कभी कभी मन में आता है कि अरे इलेक्शन जीत कर अगर विधायक हो जाता तो बहुत सुविधा मिलता। तो चलो इलेक्शन लड़ लिया, विधायक भी हो गया तो हो गया काम ना, ना अभी तो मंत्री बनना बाकी ही रह गया। ऐसे विधायक विधायक दो तीन बार इलेक्शन जीत कर सड़ रहा हूं, मंत्री नहीं बना। अच्छा मंत्री भी बन गया तब भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो चीफ मिनिस्टर बनना बाकी है। तो चीफ मिनिस्टर बन गया फिर भी नहीं, अब केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं। और यदि इलेक्शन हार गया तब क्रोध, इसके कारण मैं इलेक्शन हारा हूं। जब कामना के अनुसार कामनाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, और उसमें कुछ डिस्टर्ब होता है, नहीं पूरा हो पाता तो क्रोध होता है। ये है काम का रिजल्ट, काम क्रोध लोभ। चलो बड़े बड़े साधक जोगी जति साधु इस पर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, तो काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा मानस रोग है आत्मश्लाघा की कामना, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा। बड़े बड़े साधुओं में भी आत्मश्लाघा की जो कामना है बहुत भारी भयंकर कैंसर मानस रोग है, उससे बचना बड़ा कठिन है। स्पेशल भगवत कृपा से ही इस रोग से बच सकते हैं। जैसे इस समय कैंसर असाध्य रोग सा है, वैसे आत्म प्रशंसा सुनने की जो लालसा है वो कैंसर की तरह है। अब पता नहीं शास्त्रों में कथा है नहीं है, कोई प्रमाणिक है अथवा नहीं, इस बात को तो मैं नहीं बतला सकता। लेकिन रामचरितमानस में एक घटना का जिक्र करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि एक बार बद्रिकाश्रम में घूमते हुए जब देवर्षि नारद गए और वहां के सुंदर वातावरण देखे तो इनका मन बड़ा शांत हुआ और वहां स्थिर होकर के भगवान नारायण का भजन करने लगे, चित समाधि में लगा दिए और निश्चल भाव से भजन प्रारंभ किए। और उनकी स्थिर समाधि को देखकर देवराज इंद्र को घबराहट हो गई कि पता नहीं ये नारद ऐसे कैसे स्थिर हो गया, ये तो प्रीचर है, घूमते रहता है, तो भजन करने लगा, कहीं इसके तपस्या से भगवान संतुष्ट हो और हमारा इंद्र पद मांग ले तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि लोभ के बहुत बड़े प्रतीक हैं देवराज इंद्र, तो अब अपना पद बचाने के लिए बेचारे कामदेव को कुछ अप्सराओं के साथ भेज दिए कि उनको थोड़ा डिस्टर्ब करो, भगवान को तपस्या से प्राप्त करके कुछ वरदान न प्राप्त करे, बीच में ही तपस्या भंग कर दो। तो कामदेव आया, अपना खूब बल लगाया। मैं उन विस्तार से कथाओं में नहीं जाना चाहता हूँ, संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि कामदेव अपना सारा प्रयास करके थक गया, नारद पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब सोचने लगा कि चलो हमारा ये पुष्प सर नारद पर काम नहीं कर रहा है, स्वर्गीय अप्सराओं का कोई आकर्षण इसमें नहीं है, लेकिन एक टेस्ट लेता हूं, क्या इसको आत्मश्लाघा रूप हथियार काम कर सकता है, इसकी प्रशंसा करता हूं। प्रशंसा तो सबको सुनने में अच्छा लगता है, और कहीं अगर सुनने की लालसा किया तो यही एक पॉइंट है, वीक पॉइंट, जहां से इसको गिराया जा सकता है, और तो कोई उपाय बचा नहीं। तो नारद के चरणों में जाकर कामदेव दंडवत प्रणाम किया एकदम, और पैर छू कर कहा धन्य हो देवर्षि, मैं बहुत देखा, बड़े बड़े जोगी जतियों को देखा, विश्वामित्र जैसे ब्रह्मा को चैलेंज करने वाले को देखा, लेकिन धन्य हैं आप तो वास्तव में भगवान ब्रह्मा शिव और इंद्र से भी ऊपर हैं। अरे भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता पितामह अपने बेटी के सौंदर्य से प्रभावित हो गए, उनमें कामुकता देखा गया, भगवान शिव बहुत ज्यादा जोग दिखाए तो जलाकर भस्म कर दिए, उनमें क्रोध देखा गया। इंद्र तो महालोभी, दिन रात लोभ में पड़ा हुआ, अपना पोजीशन बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है। त्रिलोकी का स्वामी इंद्र में लोभ, ब्रह्मा में काम, शिव में क्रोध, और धन्य हो देवर से आपको तो तीनों स्पर्श ही नहीं कर पाया, आप में न काम है न क्रोध है न लोभ है, धन्य है आप, प्रणाम करके चला गया। और नारद की समाधि भंग हुई, सोचने लगा कि कामदेव कहा क्या। और वास्तव में पोजीशन मेरा है तो केवल वही जानता है, वो तो एडवर्टाइजमेंट प्रचार तो करेगा नहीं, इतना तो विज्ञापन नहीं करेगा कि नारद सबसे बड़ा है, वो गया मन में आया कह दिया। लेकिन वास्तव में ये विचारणीय विषय है, शिव को भी बहुत अहंकार है कि हम कामदेव को जलाए, लेकिन कामदेव जय शिव बहुत किए तो जलाकर भस्म कर दिए, उनमें क्रोध आया और हम में तो क्रोध भी नहीं आया। तो अब वहां से चले अपना भजन छोड़कर इस बात को कहने के लिए ब्रह्मा के पास गए, पिताजी कुछ न्यूज मिला आपको प्रणाम आदि करने का? ब्रह्मा जी कहे ना हमको पता नहीं है। तो अरे अभी कामदेव गया था, अपना सारा प्रयास करके थक गया, कुछ नहीं बसर चला तो मुझे प्रणाम करके हार मानकर चला गया, कोई असर नहीं हुआ मुझ पर। तो ब्रह्मा जी कहे ये क्या आश्चर्य का विषय है, तुम भक्ति के आचार्य हो, तुम्हारे अंदर काम का कोई असर न हो, ये तो मामूली बात है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ब्रह्मा की तरफ से। तब शिव जी के पास गए, शिव जी को सुनाए तो शिव जी हंस दिए, अच्छा सीमा पर पहुंच कर भी फिसल गए। तो शिव जी मुस्कुरा दिए, कहे कि कोई बात नहीं, ये तो आपके ये साधारण चीज है, आप भगवान के शरण में हो, जो भगवान के आश्रित रहता है उसके लिए काम पर विजय प्राप्त करना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। लेकिन एक बात है कि एक मैं आपको सलाह देता हूं कि बस अंतिम बार मुझसे कहे, इसके आगे किसी से मत कहिएगा। और नारद पर ठीक उल्टा प्रभाव पड़ गया कि अपने को काम जय कहने के लिए मुझको दबाना चाहते हैं, और शिव जी कहे कि बस बस हो गया अब किसी से मत कहिएगा। तो नारद जी और उत्साहित हो गए कि देखो अपने नाम अपने जस के लिए मुझे दबाना चाहते हैं। तो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, और उनके पास जाकर जब सुनाए तो भगवान भी हंसे, कहे कोई बात नहीं, ये तो आप में स्वाभाविक है, इसको जगह जगह कहने की जरूरत क्या है, ये तो सामान्य बात है हमारे चरणों में समर्पित एक भक्त के लिए। लेकिन भगवान उनके बात से ही उनके रोग को समझ गए, अलग से कोई चेकअप कराना नहीं बाकी था, भगवान जान गए कि बड़ी भारी रोग कैंसर इसको पकड़ लिया, अब इसका इलाज तत्काल करना चाहिए, नहीं तो देवर्षि नारद जैसा व्यक्ति भी मानस रोग से ग्रसित है। तो अब श्री भगवान ने एक उपाय किए, नारद जी जब जा रहे हैं तो दिखाई दिया एक बहुत सुंदर शहर, बहुत अच्छा नगर, और उसमें एक राज दरबार। देवर्षि नारद तो सब जगह पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचे तो राजा बहुत स्वागत किया, एकदम शिष्टाचार का पालन करते हुए सम्मान पूर्वक नारद जी को आसन दिया, और अपने पास एक सुंदर ज्योति राजकुमारी वहां थी, राजा की पुत्री। तो राजा कहे कि हे देवर्षे, आप त्रिकालदर्शी हैं, हमारी बेटी शयानी हो चुकी है, आप कुछ सलाह देंगे इसका विवाह किसके साथ किया जाए, आप सब जगह घूमते हैं त्रिलोक में। तो नारद जी उसके हस्तरेखा आदि को देखकर कहे, अरे इसका तो जो हाथ पकड़ेगा वो साक्षात विष्णु की तरह यशस्वी ऐश्वर्यवान ज्ञान संपन्न पूरा भगवान ही होगा। तो नारद जी उसके रूप सौंदर्य से तो प्रभावित हुए ही, हस्तरेखा से ज्यादा प्रभावित हो गए, कहे कि इसका पाणि ग्रहण करने वाला साक्षात भगवान विष्णु के समान होगा, तो आप इसका जल्दी स्वयंवर कीजिए, विवाह कीजिए, जो भी अपने परंपरा के अनुसार जिसको वरमाला डाले उसे विवाह किया। हाँ परंपरा तो यही है, लेकिन कुछ पता चल जाता तो हम डायरेक्ट संबंध करते, नहीं स्वयंवर ही कर लीजिए। और मन में कामुकता जग गई कि जल्दी स्वयंवर का डेट रख दिया गया, तो नारद के मन में स्वयं विचार आ गया कि यदि यह विश्व सुंदरी मुझको वरमाला डाल देती तो बहुत अच्छा होता। क्यों क्यों अच्छा होता? कि शिव ब्रह्मा और इंद्र से तो ऊपर चल ही रहे हैं, विष्णु बाकी हैं, तो उनकी बराबरी का उपाय तो प्रकट है कि अगर यह वरमाला डाल देती है तो विष्णु के बराबर भी हो जाएंगे। जब जस की कामना बढ़ रही है तो विष्णु केवल बाकी रह गए, तो उनकी बराबरी करने का उपाय है इसे विवाह कर लेना। तो नारद जी के मन में आ गए, लेकिन विष्णु यदि स्वयंवर में आ जाएंगे तब तो मुझ में वरमाला नहीं डालेगी, तो उनको तो रोकना पड़ेगा कि वो ना आवे। एक काम और दूसरा कुछ देर के लिए अपना रूप दे दें। इतना भजन किया क्या ये भी नहीं कर सकते हैं? तो नारद जी पहुंच गए विष्णु के पास, कहे कि हे प्रभु, बड़ी कामुकता में थे, जही विधि हुई, लेकिन भक्त थे स्वाभाविक निकल गया, जही विधि हुई, नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, मेरी अवस्था को तो आप पहचान ही रहे हैं, मेरा कल्याण मेरा हित जिसमें हो वही कीजिए, और जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, जल्दी कीजिए, आप रूप दे दीजिए। तो भगवान कहे, नारद यह तो वहां से भी संकल्प भी करता तो मैं कर देता, यहां आने क्या जो, जाओ जाओ, एकदम अपना रूप दे रहा हूं। नारद जी गए और वहां जाकर बड़े शान में बैठे थे, लेकिन वो तो देखी भी नहीं इनके तरफ, किनारे से चली गई, तो कहे लगता है इधर ध्यान नहीं दे, तो फिर उठ कर गए दूसरे किनारे, लेकिन वो देख ही नहीं रही थी। शिव जी के गढ़ इनकी हालत को देखते हुए कह दिए कि जरा अपना मुख किसी पानी या दर्पण में देख लो ना, इतना बेचैन क्यों हो। नारद जी को क्रोध तो आया, लेकिन सोचे कि बात क्या है, और जब देखते हैं तो मुंह बंदर का है। तो कहते इतना भारी धोखा दिया विष्णु, भरी समाज में एक बार विवाह की भी इच्छा हुआ तो बंदर का मुख बना दिया। बहुत क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि भगवान को भी श्राप दे दिए, मैं स्त्री के कारण इतना बेइज्जती सहा, आप भी स्त्री के कारण वन वन में रोते हुए घूमोगे। तो जब भगवान श्री राम के रूप में सीता वियोग में, राम लक्ष्मण अरण्य कांड में वर्णन है कि सीता वियोग में जब वो घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, सब वनवासियों से, पेड़ पौधे से पूछ रहे थे, मेरी प्रिया सीता को देखा, खग मृग से पूछ रहे थे, उस बेचैनी की अवस्था में नारद जी पहुंचते हैं और जा करके भगवान राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न करते हैं भगवान राम से कि हे प्रभु, अगर आप उस समय हमारा विवाह आसानी से होने देते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती ना, आप क्यों नहीं विवाह होने दिए, इतना दुख क्यों सह रहे हैं, आप तो सर्व अंतर जामी हैं। तो भगवान वहां बहुत सुंदर प्रवचन किए, यही तो बात है नारद, वनवास जैसे दुख मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे समर्पित भक्त की बेइज्जती, एक काम जय व्यक्ति एक स्त्री के चंगुल में पड़ कर रहे, यह नहीं सह सकता, यह नहीं सह सकता। जैसे आंख की रक्षा पुतली करती है, छोटे मासूम बच्चा अगर अनजान में आग पकड़ता है तो क्या माँ उसको छोड़ देगी, देख लेगी तो बचाती है, जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, आंख की रक्षा पुतली करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो यह मेरे स्वभाव में है नारद, कहां तुम काम जई और कहां लंपट की तरह कामुकता में व्याप्त, यह तो तुम्हारा अहंकार चूर करने के लिए मैंने ऐसा व्यवस्था किया कि तुम्हारा जस बरकरार रहे, लेकिन तुम्हारे मन में जो एक कैंसर है कि हम शिव और ब्रह्मांड इंद्र से ऊपर चल रहे, यह है मानस रोग, इसको दूर करना जरूरी। तब नारद जी को होश हुआ, अरे बाप रे, कितने दयालु हैं प्रभु। तो मन की सुरक्षा भगवान जोगेश्वर करते हैं। ये हमारी संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी, किसके लिए, बिजनेस व्यापार भोग के लिए, फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपने कृष्णमयी चेतना के लिए, हमारी चेतना कृष्ण में रहे, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना किए हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत वैज्ञानिक ढंग से विचार करके संस्था का नाम दिए हैं, ऐसी सोसाइटी जहां मन को सुरक्षित किया जाए। मन विषयों में भटक रहा है, बेचैन है, कभी क्लब में, कभी सिनेमा घर में, कभी कहां, कभी विद्यालय में, कभी शराब खाना में, कहां कहां ले जाता है व्यक्ति को, उन सब से हटाकर कृष्ण में चित रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। तो मन की रक्षा भगवान जोगेश्वर करते हैं, और जोगेश्वर कौन है, श्री कृष्ण, जोगेश्वर कृष्ण। इस प्रकार भगवान के नामों का स्मरण करते हुए नारायण कवच से रक्षा कर रही हैं गोपियां, और फिर आगे भगवान के अनेक नाम, प्रिश्नी गर्भ भी भगवान का नाम है, प्रिश्नी गर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान परह, किरंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। प्रिश्नी गर्भ, भगवान कृष्ण ही प्रिश्नी और सुतपा के पुत्र के रूप में आए थे सृष्टि के प्रारंभ में, तो उनका नाम हुआ प्रिश्नी गर्भ। अवतार के बाद देवकी और वसुदेव के सामने अपने तीन अवतार की कथा कहते हैं कि आप लोगों ने प्रिश्नी सुतपा के रूप में मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या किए, तो मैं आपका पुत्र बना, मेरा नाम हुआ प्रिश्नी गर्भ। दूसरे बार आप और अदिति और कश्यप के रूप में आए, तो मैं आपका पुत्र बनकर आया, मेरा नाम उपेंद्र हुआ, वामन देव। और तीसरी बार आप देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं, तो मैं आपका पुत्र बना हूं, मेरा नाम होगा वासुदेव कृष्ण। तो प्रिश्नी गर्भ भगवान का ही नाम है। प्रिश्नी गर्भस्तु ते बुद्धि, प्रिश्नी गर्भ तेरे बुद्धि की रक्षा करें। और आप मानो भगवान परम, परमात्मा सबके हृदय में रहने वाले भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। अहंकार अलग अलग है ना, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम यूरोपियन हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये जो अहंकार है, हम पढ़े लिखे हैं, हम धनी हैं, तरह तरह के अहंकार है। और वास्तविक अहंकार है कि हम कृष्णदास हैं, जीवर स्वरूप है और कृष्ण नित्य दास। तो इस अहंकार की रक्षा होनी चाहिए। दासो हम रघुनाथस्य, हम भगवान श्री रघुनाथ के दास हैं। तो इसकी रक्षा भगवान परमात्मा करें जो सबके हृदय में रहते हैं। और खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करें। किरंतम पात गोविंद, कृष्ण ही गोविंद है। सयानम पात माधव, सोते समय भगवान माधव रक्षा करें, खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करें। भजंतम, चलते समय अव्याद वैकुंठम, भगवान वैकुंठ रक्षा करें। आसीनम तम श्रीपति, बैठे अवस्था में भगवान लक्ष्मीपति रक्षा करें। सब समय संकट है, हिरण्यकश्यपु विचार करके वरदान मांगा था, न दिन में न रात में न घर में न बाहर, कहीं भी न मरूं। तो चलते समय भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बैठते समय भी संकट आ जाता है, सोते सोते कोई सोया ही रह जाता है। तो सब जगह रक्षा की मांग कर रही। आसीनम, बैठे अवस्था में त्वम श्रीपति, लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करें। और श्रीपति, भुंजानम यज्ञ भूक पातु, सर्व ग्रह भयंकर, और भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तुम्हारी रक्षा करें। डंकिन्यो जातु धान्यस्य कुष्मांडा, एर्भक ग्रह भूत प्रेत पिशाचाश्च, यक्ष रक्षस रक्षो विनायका। तो और भी बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच आदि हैं। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दय उन्मादा ये यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। तो इस प्रकार तीन श्लोक एक साथ अन्वय है। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। तो डाकिनी से, राक्षसी से, कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, बच्चों पर जो संकट आता है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा, ये सब प्रेतिनी है, डाकिनी भूतिनी, ये सब पूतना मातृका, शरीर प्राण आदि इंद्रियों को नाश करने वाले उन्माद पागलपन आदि, और अपस्मार कहते हैं मृगी आदि रोग, या स्वप्न में देखे हुए भय, अचानक व्यक्ति भयभीत हो जाता है, सभी प्रकार के ग्रहों से रक्षा, अनिष्टकारी भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से सारे भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम बार बार उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव, सारे विपत्तियों से रक्षा भगवान का नाम करता है। फिर यहाँ एक बार कह दिए, सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव, सभी प्रकार के संकटों से भगवान का नाम रक्षा करता है। विदिक्षु दिक्षु मदह समन्ताद अंतर बहिर भगवान नारसिंह, प्रहा पयम लोक भयम सुने न स्व तेजिसाग्र समस्त तेजा। भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हुए नारायण कवच में कहा गया है, घर में बाहर दिशा विदिशा प्रदेश जंगल पहाड़ जहां तहां एकांत भयभीत की अवस्था में सब जगह भगवान रहते हैं नृसिंह देव। विदिक्षु दीक्षु मद समन्ता सब जगह अंतर बहिर अंदर और बाहर इतो नृसिंह पर तो नृसिंह जातो जातो जामे ततो नृसिंह बाहे नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंह मादिम शरणम प्रपद। तो इस प्रकार भगवान नृसिंह सब जगह रहते हैं और प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह के प्राकट्य पर जो स्तुति किए उसमें कहे हैं कि हे प्रभु आपने तो आज ऐसा स्पेशल रूप धारण किया कि जब जब वैष्णवों पर संकट की संभावना होगी तब तब आपका स्मरण करेंगे क्योंकि यह अवतार स्पेशल भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है। आप मेरे रक्षा के लिए जो रूप धारण किए हैं इमरजेंसी अवतार या कोई बाल लीला या जवन लीला या विवाह शादी के लिए अवतार नहीं हुआ है। जैसे रामा अवतार मर्यादा का पालन करना या कृष्ण अवतार में लीला पुरुषोत्तम के रूप में ऐसा अवतार नहीं हुआ है। एकदम तत्काल इमरजेंसी अवतार है अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो जब जब वैष्णव पर संकट की संभावना होगी थोड़ा भी भय का अवसर आएगा तब तब भक्त लोग आपके इस रूप का स्मरण करेंगे और हे नाथ ऐसे स्मरणकारी भक्तों की आप अवश्य रक्षा कीजिएगा। केवल मेरा ही नहीं जब भी भक्त आपको स्मरण करेंगे तो आप उनकी रक्षा अवश्य कीजिएगा। तो इसलिए भगवान नृसिंह देव सब जगह भक्तों की रक्षा करते हैं। ये भक्त लोग यात्रा प्रारंभ होते ही जरूर याद करते हैं नृसिंह देव की सफलता पूर्वक जगह पर पहुंच जाए कोई विघ्न बाधा ना हो। तो इस तरह से भगवान का स्मरण किया जाता है भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। नाम उच्चारण भगवान को प्रणाम करना भगवान को का दर्शन करना ये सब भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की विधि है। किसी न किसी रूप में हमारा संबंध भगवान से हो इस रूप में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान का नाम भगवान के भी रक्षक है। ये देखिए भगवान के रक्षा में भगवान के नाम का प्रयोग किया जा रहा है बार बार। या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहणा भीरव नाम ग्रहणा भीरव। भयभीत अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। भगवान का नाम सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता है। श्रील प्रभुपाद भी इस श्लोक पर काफी लिखे हैं कि ऐसे भगवान अद्भुत हैं अद्वितीय हैं अनादि हैं अच्युत हैं वेद दुर्लभ हैं उनको जानना बड़ा मुश्किल है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च। एक जगह ही विपरीत बातें कही जा रही हैं। आद्यम ये आदि है सबसे पुराण है। आद्यम पुराण पुरुषम मतलब सबसे पहले के व्यक्ति हैं सबसे ज्यादा वृद्ध हैं और साथ ही नवजौवनम च सबसे वृद्ध है। ब्रह्मा के भी बाप हैं लेकिन सबसे ज्यादा जवान है एकदम युवक 15-16 वर्ष के युवक सुंदर लगते हैं। यह है भगवान में विपरीत अवस्थाएं देखी जाती हैं। उनके समान कोई नहीं है। अद्वैत हैं अच्युत हैं अपने पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते गिरते नहीं हैं अनादि हैं अनंत हैं सब विषय में। और एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि वेदेश दुर्लभम वेद के लिए भी दुर्लभ वस्तु हैं वेद भी जिनको पार नहीं पाता है। नेत नेत कहीं वेद पुकारे न इति भगवान का कोई अंत नहीं ऐसा कहता है वेद। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तौ लेकिन अपने प्रिय भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है। यह है गोविंदवाद पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं जो सब विषय में सबसे बढ़कर हैं वेद के लिए भी दुर्लभ वस्तु हैं लेकिन जो उनका भजन करता है उनके लिए उनका कोई रहस्य छिपा नहीं रहता उनको जान जाता है। तो इस प्रकार भगवान के से संबंध स्थापित करने वाले भक्त अपने अंगों पर तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक, गोपी चंदन, और भगवान के नाम के द्वारा उनका आवाहन करके स्थापित करता है और बड़ा शौक श्रृंगार के साथ चलता है, हम विष्णु के हैं। जैसे एक सौभाग्यशाली स्त्री अपने ललाट में, अपने मांग में सिंदूर लगाकर चलती है, सौभाग्य का चिन्ह कि मैं पति के साथ हूं, सौभाग्यवती हूं, वैसे ही भगवान से संबंध रखने वाले भक्त अपने शरीर में भगवान के चिन्ह तिलक धारण करके चलते हैं और बड़ा सुंदर लगते हैं। यद्यपि गोविंद का संबंध सबके साथ है, लेकिन कुछ लोग उनको स्वीकार करके समाज को दिखाते हैं मैं गोविंद का हूं, मैं कृष्ण का हूं, हरे कृष्ण भक्त, तिलक लगाकर, कंठी लगाकर चलते हैं। इस प्रकार भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं और सब समय किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण किया जाता है। स्मरण करने की कई विधि है, तिलक लगाना भी भगवान का स्मरण है, कंठी धारण करना भगवान के साथ संबंध है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का दर्शन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत आवश्यक है। इस तरह से भगवान का चिंतन सदैव बना रहता है। भगवान शिव एक जगह कहते हैं कि जितनी आराधनाएं हैं, जितने भजन की पद्धतियां हैं, उसमें सबसे बढ़कर है विष्णु आराधन, विष्णु आराधनम परमम, सबसे बढ़कर है, सर्वोच्च है। सभी जगह इस बात को कहा गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं भी सभी शास्त्रों में भगवान का स्मरण की बातें कही गई हैं। आयुर्वेद शास्त्र की संस्कृति है जो औषधियां तैयार करते हैं रोगी लोगों को स्वस्थ करने के लिए, उसमें भी मंत्र कहा गया है औषधि चिंतयेत विष्णुम। औषधि जब तैयार किया जाता है तो वैद्यों का कर्तव्य है कि भगवान का स्मरण करके दवा तैयार करें, और खाते समय भी औषधि चिंतयेत विष्णु, औषधि सेवन करते समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो औषधि और डॉक्टर और स्नेहमय जननी, वो बहुत काबिल नाविक, किसी की रक्षा नहीं करता। देखा जाता है कि नाव लेकर नाविक समुद्र के तरंगों में भी चलता है, स्नेहमय जननी अपने गोद में चिपकाकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य हॉस्पिटल खोलकर रोगियों की रक्षा करते हैं, लेकिन हे नृसिंहदेव, बालस नेह शरणम पितरो नृसिंह, ये सब रक्षक तभी तक हैं जब आप रक्षक के रूप में तैयार हैं। आप रक्षा करते हैं तो जननी जननी बनी हुई है, माँ स्नेह करती है, स्नेहमयी है, और नाविक भी बहुत काबिल है, समुद्र के लहरों पर नाव चलाता है। बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में बड़े यशस्वी जस कमाते हैं, लेकिन आप रक्षा की जिम्मेवारी छोड़ दें तो कुछ नहीं कोई कर सकता। कोई औषधीय गुण दवाओं में नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, कोई माँ नहीं बचा सकती। इसका उदाहरण कहीं बाहर खोजना नहीं है, अपने घर पर अपने पास है। प्रहलाद महाराज के पास ये उदाहरण है, जब आप बचाने के लिए तैयार थे तो आप जब हमारे रक्षक के रूप में तैयार हैं तो हमारा बाप हिरण्यकश्यपु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, बाल बांका नहीं कर सका, खूब कोशिश किया मारने का, लेकिन जब रक्षक के रूप में आप हैं तो हमें मार नहीं सका। और जब आप मारने का मूड बना दिए तो ब्रह्मा का वरदान हिरण्यकश्यपु को नहीं बचा पाया। तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, और वो मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। न रावण को शिव जी का कृपा वरदान बचा पाया, न हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा का वरदान, और न कंस को देवी का आशीर्वाद, दुर्गा का भक्त था। बदमाश लोग भी देवी देवताओं के बहुत भजन करते हैं, ये सब एकदम दुनिया के बड़े बड़े हुड लोग कितने भक्त थे। कंस देवी का भक्त था, रावण शिव का भक्त था, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का, लेकिन नहीं बचा पाए। तो दवा खाते समय भी विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं है। भगवान विष्णु असली रक्षक हैं, वही रक्षा कर सकते हैं। समस्त विपदाओं से भरा हुआ जगत है, पदम पदम जद विपदाम। मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर भगवान के चिंतन का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र इस चिंतन में सबसे सुगम उपाय है। कीर्तनीय सदाहरि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से प्रभुपाद उत्साह दे रहे हैं कि वास्तव में भगवान से संबंध रखना चाहिए, किसी भी न किसी रूप में भगवान से संबंध रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मन भगवान में लग रहा है कि नहीं, हमारा मन तो खुद पता है बहुत चंचल है, हमारे भजन को भगवान के यहाँ कोई काउंटिंग है कि नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम जो भी थोड़ा भी भजन करते हैं उसको भगवान बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहे हैं, जब विभीषण उनका शरणागति स्वीकार किया तो उनके समाज के लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, सुग्रीव आदि, कि अरे रावण का भाई है, आप इसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो वर्णन है, दूर से जब सुग्रीव जी देखे कि वो कौन है, तो एक हनुमान जी कहे कि वो विभीषण जी हैं, रावण के छोटे भाई। विभीषण, वो क्यों आ रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। राजा थे ही सुग्रीव, तुरंत आदेश किए उसको अरेस्ट किया जाए। हनुमान जी तो बताकर बड़ा फेर में पड़ गए। लंका में गए थे तो विभीषण से मित्रता हो गई थी, और इधर राजा आदेश कर दिया कि उसको अरेस्ट करो, इधर नहीं आने देना है, वो दुष्ट भेद लेने के लिए आ रहा है, अरेस्ट करो उसको, इधर नहीं आना है उसको, हम लोगों की गोपनीयता जान जाएगा। हनुमान जी तो घबरा गए कि बड़ा गड़बड़ काम हो गया। तब तक भगवान कहते हैं कि हाँ, आप राजनीति की बात तो बहुत फर्स्ट क्लास किए, आप राजा हैं, राजनीतिक दृष्टि से तो दुश्मन के भाई संबंधी को दूर ही रखना चाहिए, लेकिन सुग्रीव जी मैं अपने विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। अब तक आप मेरे स्वभाव को नहीं जाने, तो इसमें स्वभाव जानने की बात क्या है, आपके स्वभाव से उसके आगमन का क्या संबंध है। तो पहले तो देखिए किस मूड में आ रहा है, किसी मूड में आ रहा हो मानो दोस्ती का ही ढोंग करेगा, लेकिन है तो रावण का भाई। सुग्रीव और भगवान राम में बहस होने लगी, तो भगवान कहते हैं कि नहीं सुग्रीव जी, आप इतना मत घबराइए, पहले आने दीजिए, देखते हैं वो क्या कहता है, क्या उसका एक्शन है, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। तो अगर वो आकर पाखंड बस दंभ पूर्वक या कुछ छल पूर्वक आपको प्रणाम करे तो फिर क्या करेंगे। तब भगवान हंस दिए कि ज्यों ही मुझे प्रणाम करेगा त्यों जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त कर दूंगा, और उसको एक जैसे सामान्य रूप से मेरे शरणागत भक्त मेरे लिए सम्माननीय आदरणीय है वैसे उसको आदर दूंगा। प्रकट होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश हो तबहि, ज्यों ही मेरे सामने आकर प्रणाम कर देगा जन्म जन्मांतर का पाप समाप्त कर दूंगा। ये वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक का अनुवाद है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं, सक्री देव प्रपन्नो जह तवास्मिति जयाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददा मे तद व्रतम मम। हे सुग्रीव, मेरा यह व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई एक बार भी, 10 बार 20 बार सैकड़ों बार की बात तो छोड़ दीजिए, एक बार मेरे चरणों में आकर प्रणाम करके कहे तवास्मिति जयाचते, हे श्री राम मैं आपका हूं, बुरा हूं भला हूं नीच हूं पापी हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, तो मेरी प्रतिज्ञा है कि अभयम सर्वदा तस्मयी, उस व्यक्ति को सदा सदा के लिए अभय कर देता हूं, ददा मे तद व्रतम मम, यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं गप नहीं कर रहा हूं। और कहा जाता है शास्त्रों में प्रसिद्ध उक्ति है, राम की बात और राम की बाण अमोघ है, जो कहते हैं उसको करते हैं, और राम के बाण जो छूटता है उसका कोई प्रतिकार नहीं है। तो मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उस भक्त की रक्षा करता हूं। तो एक बार प्रणाम करने वाला का जब इतना केयर करते हैं, इतने बड़े कृतज्ञ भगवान हैं, तो फिर चिंता किस बात की है। हम लोग तो कई बार प्रणाम कर दिए, तो अगर सचमुच उनका व्रत है तो हमको निश्चिंत रहना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हमारे दर्शन में देखते हैं तो देखने में ध्यान से नहीं देखते भगवान का श्रृंगार कैसा है। कभी कभी पुजारी लोग जल्दीबाजी में कुछ श्रृंगार करते हैं कि गांव में, बिहार के एक गांव में छोटा सा चित्रपट रखा हुआ था राधा मदन मोहन जी का और फिर पंच तत्व का। तो श्रृंगार दर्शन के समय जब पट खुला, सब भक्त लोग प्रणाम किए तो महाराज श्री भी थे, तो पंच तत्व का जो चित्रपट था उसको उल्टा रख दिया था। तो नहीं ध्यान आया होगा, सब लोग दर्शन किए, गोविंद आदि पुरुषम हो रहा था, तो महाराज श्री कहे कि अच्छा आज पंच तत्व शीर्षासन कर रहे हैं। तो मैं उनके बगल में खड़ा था, क्या बोले महाराज, तो मैं कहा क्या, मैं पूछा क्या, तो पंच तत्व शीर्षासन कर रहे हैं। तो फिर मैं पुजारी को जाकर कहा कि आप पंच तत्व को उल्टा रख दिए हैं, तो कहे कि अरे ध्यान नहीं दिया। तो कभी कभी हम लोग दर्शन करते हैं लेकिन विशेष ध्यान से नहीं करते। लेकिन एक विशेष घटना है, महाराज श्री सुनाते हैं कि बहुत पहले की बात है, वृंदावन के एक स्वामी थे, स्वामी शरणानंद, दोनों आंख के अंधे थे और मानव सेवा संघ के वो अध्यक्ष थे, दोनों आंख के अंधे। बहुत पहले की बात है, लगभग 67-8 की बात है, 1970 से पहले। तो उस समय जो मानव सेवा संघ के अध्यक्ष थे, प्रतिदिन बांके बिहारी मंदिर में आते थे और आ करके खड़ा होकर हाथ जोड़कर खड़ा रहते थे घंटों, एक घंटा दो घंटा। तो महाराज कह रहे थे कि हम लोग रोज जाते और उनका हाथ जोड़कर खड़ा रहना देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, इनको क्या दिखाई दे रहा है। कुछ श्लोक भी बोलते, कुछ मंत्र बोलते, चुपचाप खड़े रहते कोने में खड़ा होकर। तो महाराज कहे कि हम जिज्ञासा किए कौन है, लोग बताए कि ये मानव सेवा संघ के अध्यक्ष हैं स्वामी शरणानंद जी। तो कुछ बच्चों के मन में जिज्ञासा हुआ कि इनसे पूछा जाए कि आप मंदिर में रोज क्यों आते हैं और क्या अनुभव करते हैं। तो एक लड़का पूछ दिया, महाराज जी, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा, प्रणाम किया। तो कहा कि आप प्रतिदिन मंदिर में आते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, बांके बिहारी जी दिखाई देते हैं, और कुछ लोग तो जल्दीबाजी में आते हैं चले जाते हैं, और आप खड़ा रहकर कई देर तक रोज आते हैं और नियमित रूप से आते हैं और देर तक रहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है। तो कोई घबराए नहीं और कोई उद्विग्नता नहीं प्रकट किए, मुस्कुरा कर कहे, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं तो दोनों आंख से अंधा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं उनको देखने नहीं आता हूं, मैं तो इनको दिखाने आता हूं कि बांके बिहारी देख लें कि सुरवा आया है, मेरे देखने में क्या है। मैं तो, अगर जो आंख वाले हैं वो भी देखते होंगे कि पत्थर का मूर्ति है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उनके देखने में बहुत बड़ी खूबी है, अगर वो देख लें तो कल्याण हो जाएगा। तो हम तो हाजिरी देने आते हैं, हमारे देखने में क्या दम है, मैंने अच्छा चीज नहीं देखा इसीलिए तो आंख छीन लिया गया है, तो अब दिखाने आते हैं कि मैं आया हूं, मैं तो हाजिरी देने आता हूं बेटा। और मैं ही नहीं, मैं तुम लोगों को भी सलाह दूंगा कि इसी तरह आना चाहिए, हाजिरी देने जरूर आना चाहिए। तो भगवान के देखने में दम है, भगवान देख रहे हैं कि विभीषण आ रहा है, आकर मेरे शरण में आएगा। तो रामचरितमानस में और विशेष ढंग से वर्णन करते हैं कि जब प्रणाम किए तो उनको संबोधन करते हुए भगवान कहते हैं, कहो लंकेश कुशल है। तो सारा फिर एक आश्चर्य हुआ कि अभी लंकेश रावण जीवित है, इसको लंकेश कैसे कह दिए। तो कह दिए, केवल कह ही नहीं दिए, समुद्र का जल उठाए और संकल्प किए कि इस युद्ध के बाद, रावण के मरने के बाद, मैं लंका का राज आपको समर्पित करता हूं एडवांस। तो फिर एक विचित्र आश्चर्य हुआ, कि यह संवाद रावण को मिला और युद्ध छोड़कर शरण ले लेगा तब क्या करेंगे, लंकेश इसको बना दिए। तो कहे कि अभी तो तत्काल अयोध्या का राज मिलने वाला है, बहुत दिन रावण लंका का राजा रहा, अब अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जो संपदा शिव रावण ही दिए दिन दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन रघुनाथ। जो दस दस बार सिर काट कर चढ़ाने के बाद जो लंका की संपदा भगवान शिव रावण को दिए, वही संपदा भगवान जब विभीषण जी को दिए तो बड़े संकोच के साथ, बड़ा संकोच करते हुए, बड़ा शर्म करते हुए कि मैं विभीषण को कुछ नहीं दिया। और एक कवि, हिंदी कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम बिंदु जी करके प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, वो लिखते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया तो भगवान रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो विलाप करते हुए अपने शोक को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि आज तक मुझे इन बातों से दुख नहीं हुआ, लेकिन आज विशेष रूप से मैं दुखी हूं एक बात के लिए। क्या कहते हैं, तात के सोच न मात के सोच, न सोच पिता सुरधाम गए को, माताएं विधवा होकर अयोध्या में पड़ी हैं, इसका कोई टेंशन मुझको नहीं है। पिताजी स्वर्ग चले गए, शरीर छोड़ दिए, इसका भी टेंशन नहीं है। न सोच हमें वनवास भय को, और सिया हरण की सोच नहीं, नहीं सोच दशानन राड भय को, मुझे वनवास हुआ इसका भी टेंशन नहीं है। सीता का हरण हो गया ये भी दुख का विषय नहीं है मेरे लिए। रावण से युद्ध छिड़ गया इसका भी दुख नहीं है। लक्ष्मण शक्ति की सोच नहीं, लक्ष्मण जी को गोद में लेकर रो रहे हैं, कहते लक्ष्मण को बाल लगने से कोई टेंशन नहीं है। अरे तब क्यों रो रहे हैं? तो कह रहे सोच में सोच महा एक सोच, भक्त विभीषण बाह गए को। मैं विभीषण को वादा कर दिया कि लंका का राज दूंगा, और आज अधूरा रह गया लक्ष्मण के मारे जाने पर। हो सकता है मैं युद्ध नहीं जीत पाऊं तो अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे सोच। ये है भगवान की लीला। सर्व समर्थ ईश्वर, कभी कभी कहते हैं कि रावण से युद्ध की चिंता है सुग्रीव जी, अरे हमारा एक लक्ष्मण पलक झपकते ही सारा विश्व को नष्ट कर सकता है। और वही सर्व समर्थ ईश्वर कह रहे हैं कि युद्ध हार गया, और आज मैं सुग्रीव विभीषण को वादा किया कि लंका का राज दूंगा, वो नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए सोच कर रहा हूं। यह अद्भुत समर्पण की भावना, समर्पित भक्तों के प्रति भगवान का स्नेह मई लीलाएं हैं। तो यहां एक विशेष बात प्रभुपाद जी के बातों पर याद आ गया कि किसी भी तरह से नाम कीर्तन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से संबंध बनाकर रखना चाहिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति प्रणव बद्धा भी गोपी भी कीर्त रक्षणम पाई इत्वा स्तनम माता सन्निवेश यदात्मजम। इति प्रणय बद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम। अब इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार स्नेह से बंध कर गोपियां भगवान की रक्षा की। अच्छा, रक्षा की मंत्रों से तो रक्षा कर ली, लेकिन यह बच्चा पूर्ण सुरक्षित है इसका जांच कैसे करेंगे? इनके पास बच्चे के सुरक्षा जांच के मशीन क्या है जिसे जांच कर लें? तो इसका एकमात्र उपाय है कि इस बच्चे को स्तन पकड़वाया जाए और आसानी से पीने लगे, तब मान लिया जाएगा ठीक है, बीमार नहीं है। छोटे बच्चों को स्वस्थ की जानकारी माताएं करती हैं अपना स्तन पिलाकर, तब गोपियां जशोदा के गोद में देती हैं। पाई त्वास्तम माता सन्निवेश यदात्मजम। तो माता जशोदा अपने पुत्र को गोद में ली, और गोद में लेते ही बालक बड़ा प्रेम से स्तन पीने लगा। स्तन पकड़वाई और जब पीने लगा प्रेम से, तो जय हो, सारी गोपियां खुश हो गईं, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस राक्षसी के स्पर्श करने से या उसका स्तन पीने से बच्चे पर कोई गलत असर नहीं हुआ है। अगर वो बीमार रहता तो नहीं पीता, या कुछ उसका प्रभाव रहता इसके शरीर में तो नहीं पीता। तो जब पीने लगा अस्तंत माता जसोदा बहुत खुश हो गई। एक आचार्य कहते हैं कि गोपियां जय हो करने लगी और जसोदा अस्तन पिला करके टेस्ट करके गोपियों के गोद में दे दी और सभी आशीर्वाद दे रही, सभी चूम रही हैं बहुत, और बच्चा गोपियों के गोद में चुम्बन आलिंगन स्नेह प्राप्त करते करते अब थका सा महसूस करने लगा। तब फिर से माता जसोदा के गोद में देती हैं और माँ जसोदा अपने बेड पर पलंग पर जाकर अपने बच्चे को अस्तन पिलाते हुए उसको सुला दी। और जब सुख पूर्वक दूध पीकर, माँ के दूध पीकर जब सो गया तब बहुत खुश हो गई गोपियां, सभी प्रसन्न हो गई। तो यहाँ तक तो गोपियों और जसोदा के स्नेह वात्सल्य का वर्णन हुआ, कृष्ण के राक्षसी के हाथ से बचकर सुरक्षित रूप में आए हैं इसका जांच हो गया और बच्चा एकदम आनंद से सो गया। इसके बाद अब सुखदेव गोस्वामी चलते हैं वहाँ, जो वसुदेव जी मथुरा से चले हैं वो कैसे पहुँचते हैं अब उधर भी चलते हैं। अध्याय तो प्रारंभ हुआ कि नंद बाबा चले हैं मथुरा से और वसुदेव जी के बातों का स्मरण करते हुए, तो मथुरा से चल कर वो गोकुल पहुँच रहे हैं इस प्रसंग को छोड़ दिए बीच में, पुतना की कथा कहने लगे। तो अब यहाँ फिर से वर्णन करते हैं, तावनंदादयो गोपा मथुरायाम ब्रजम गतहा। नंद बाबा के साथ और भी गोपगण थे, वे सब चल रहे हैं मथुरा की तरह। विलोक्य पुतना देहम बभुव रति विस्मिता है, जब गोकुल की तरफ आए तो ये कहां से गिरराज आ गया, विशाल पुतना का शरीर पहाड़ की तरह पड़ा हुआ है, तो आश्चर्यचकित हो गए। तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतना भयंकर शरीर जब देखे तो ये लोग चकित हो गए, ये क्या है, ये पर्वत जैसा। तब पता चला जब वहां के गोकुल के लोग बताए कि रात्रि में एक राक्षसी आई थी और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, बच्चे को लेकर आकाश में उड़ गई, किसी तरह भगवान नारायण की कृपा से बच्चा बच गया और यह उसी का शरीर है। तब नंद बाबा कहते हैं, अरे नूनम बतर्षी संजातो जोगेशो वा समास सह स एव दृष्टो हित पातो यथा आनक दुंदुभी। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, निश्चित रूप से आनक दुंदुभी वसुदेव कोई ज्योतिषी है, हमको रात में ही वो बता दिए, अवश्य ही कोई ऋषि कोई त्रिकालदर्शी महात्मा वसुदेव के रूप में जन्म लिया है। निश्चित रूप से वसुदेव पूर्व जन्म में कोई जोगेश्वर थे, कोई त्रिकालदर्शी ज्योतिषी थे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा हूबहू यहाँ सत्य निकला। वसुदेव जी बताए थे कि आपको जल्दी गोकुल जाना चाहिए क्योंकि गोकुल में उत्पात की संभावना है, बच्चों पर खतरा है। तो जैसा वसुदेव जी कहे थे वहां हूबहू एक घटना घट गई, एकदम अक्षरतः उनका भविष्यवाणी सिद्ध हुआ। अच्छा, एक नंद बाबा सोच रहे हैं और उनके साथी गोप लोग बातें विचार कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि ब्रजवासी लोग एक विशेष काम में लगे हुए हैं। कलेवरम परशु भी छित्वा तत्ते ब्रजऊ कसह दूरे छित्वा वयवसो न्यादहन काष्ट भिष्ठितम। पुतना का विशाल शरीर वहां पड़ा हुआ है, तो गोप लोग अब नंद बाबा के आने में देर हो रहा है, सुबह आए तो इधर गोप लोग एक काम चालू कर दिए, पुतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर टुकड़ा बनाकर अलग अलग चीता बनाए, लकड़ी जुटाकर जलाए। एक साथ उतना लकड़ी जुटाना जलाना बड़ा मुश्किल था, तो उसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा और लकड़ी जुटाकर उसमें आग लगाकर जलाना चाहते थे। तो जब जलाने की व्यवस्था करने लगे, लकड़ियों पर रख रख करके आग लगाए, दहे मानस देहस्य धूम चा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप मनः। जब उसके शरीर में आग लगाया गया, जलाया गया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके शरीर से जो धुआं निकला
वो बहुत सुगंधित अगरू की तरह गंध आ रहा था, बड़ा सुगंध आ रहा था। इतना सुंदर सुगंध पुतना के शरीर के जलाने से आ रहा था, तो एक आश्चर्य का विषय है, कहां से धुआं आ रहा है। दह्य मानस देहस्य धूम्रचा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सब पद्याहत पाप मना। यह पुतना जीवन भर बच्चों की मांस खाई, खून पी, और उसके शरीर से, राक्षसी के शरीर से इतना सुंदर गंध निकल रहा है, ये सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसका दूध पिया था, उसका सारा दोष समाप्त हो गया था, जिससे उनके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सब पद्याहत पाप मना, उसका सारा पाप समाप्त हो गया था। और पुतना साधारण राक्षसी नहीं रह गई थी, कृष्ण के द्वारा स्पर्श किया गया, स्तन पान किया गया। फिर उस पर आगे सुखदेव गोस्वामी और कुछ श्लोकों में कह रहे हैं, पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन प्रियतमम किम नु रक्ता स्तन मात्रो जथा। अरे कि पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, पुतना लोक में प्रसिद्ध बच्चों की हत्यारिणी थी, राक्षसी थी, और रुधिर आसन था, खून पीना ही उसका भोजन था, वो खून पीती थी। और जिघान सया पिहरे स्तनम दत्वाप सदगति, लेकिन पुतना के जीवन में एक प्लस पॉइंट यह हुआ कि भले ही अनजान में नियत बुरा था, लेकिन भगवान को अपना स्तन समर्पित की, इसके कारण यह गति प्राप्त हुई। कौन गति? सदगति। जो बड़े बड़े साधु पुरुषों को बड़ी साधना के बाद जो गति प्राप्त होती है, वो पुतना को केवल स्तन दान से प्राप्त हो गया। जिघान सया पिहरे, इतनी बड़ी पापिनी होते हुए भी, इतने महान राक्षसी होते हुए भी, वह भगवान हरि को स्तन देने के कारण इस सदगति को प्राप्त की। सदगति का मतलब जो सत्पुरुषों के मिलने चाहिए गति, जो स्थान मिलना चाहिए, वह पुतना को प्राप्त हुआ। यदि पुतना उपेक्षा के भाव से ईर्ष्या पूर्वक कृष्ण को स्तनपान कराई थी, और ऐसा करने के बाद भी सर्वोच्च गति प्राप्त की, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो भला आगे प्रश्न है, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन प्रियतरम किमनो रक्ता स्तन मात्रो जथा। और यदि कोई प्रेम से भगवान को दूध देता है, फल देता है, उत्कृष्ट वस्तु देता है, श्रद्धा के साथ देता है कृष्ण को, परमात्मा को, यक्षन प्रियतरम किमनो, तो उनको क्या प्राप्त होगा। पुतना को तो हलाहल स्तन में लगाकर मारने की नियत से आई थी, ऐसे राक्षसी को माता की गति प्रदान किए, सद गति दिए, तो फिर जो श्रद्धा के साथ कृष्ण के लिए सुंदर फल, सुंदर प्रसाद, दूध, उत्कृष्ट वस्तु समर्पित करता है, उसके विषय में क्या कहना है। फिर कहते हैं किमनु रक्तास्तन मात्रो जथा, जो ब्रज में मातृ हृदय गोपियां थी, गायें थी, उनको क्या देंगे, उनके लिए कृष्ण के पास क्या है। वास्तव में जो अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, उनके लिए कृष्ण क्या दे सकते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। फिर पुतना पर बोल रहे हैं कि इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक वंदित ही अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक वंदित ही, यदि भगवान का संकल्प पूर्वक, चिंतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक उनके चरणों को जो भक्त अपने हृदय में स्मरण मात्र करते हैं, वह व्यक्ति इस जगत में पूज्य हो जाता है। बड़े बड़े लोग जैसे ब्रह्मा, शिव, भगवान के चरण कमल बड़े बड़े देवताओं के लिए भी वंदनीय है, ब्रह्मा शिव आदि देवता भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, इसके कारण वो जगत पूज्य हैं। सबसे बड़े पूज्य हैं भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा। किस कारण से? क्योंकि वो भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो अपने हृदय में धारण करने वाले चरण को स्मरण से हृदय में धारण करते हैं, डायरेक्ट नहीं धारण करते, चिंतन करते हैं, उन चरणों का आदर करते हैं। ब्रह्मा जी बड़े आदर के साथ उनके चरण को अपने कमंडलों के जल से धोया और भगवान शिव उस जल धोवन को अपने सिर पर आदर पूर्वक श्रद्धा के साथ धारण किया। इस विशेषता के कारण जगत पूज्य बन गए ब्रह्मा और शिव। डायरेक्ट चरण नहीं, चरण धोवन के कारण शिव इतना महान बने हुए हैं। और वह डायरेक्ट चरण जिस पुतना के शरीर पर लगा, अपने हाथ से उसका स्तंभ पकड़े, अपने अधमों और ओष्ठ से उसके स्तंभ को पकड़े, अपने शरीर का पूरा आलिंगन दिए, अपने चरणों का स्पर्श दिए, अंगम जस्या समाक्रम्य, पूरे अंग से आलिंगित करके भगवान पिबतस्तनम, भगवान उसके स्तन का पान किए, तो जातु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन छीरा किमु गावो नुमातरा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो जातु धानी, वो राक्षसी सा स्वर्गम अवाप, वह स्वर्ग प्राप्त की। स्वर्ग मतलब इंद्र का स्वर्ग नहीं, स्वर्ग का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी आदि करते हैं कि जहां किसी प्रकार का दुख न हो, वह स्वर्ग वैकुंठ के लिए यहां कहा गया है, भगवत धाम के लिए। तो सा स्वर्गम अवाप, वह स्वर्ग प्राप्त की। और स्वर्ग में जाकर उसको क्या स्थान मिला, क्या पोजीशन मिला वैकुंठ में? जननी गतिम, वह माता की गति प्राप्त की, धात्री मां बनी। तो पुतना राक्षसी को जो नियत बुरा था, अस्तन में हलाहल लेकर आई, उसको माता की गति प्रदान कर दिए, तो फिर ब्रजवासियों को क्या देंगे? कृष्ण भुक्त स्तन छीरा, कृष्ण जिन गोपियों का स्तन पान किए, जिन गायों का स्तन पान किए, किमु गावो नुमातरा, उन गायों के लिए और उन गोपियों के लिए कृष्ण के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ वस्तु दे देते हैं तब तो उन ब्रजवासियों की तुलना उसी पुतना से किया जाएगा ना, इसलिए नो ड्यूज रहेगा, ये ऋण नहीं चुका सकते, नो ड्यूज नहीं हो सकता, ये ऋणी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण कुछ देकर चुप्पी कर दे, इसलिए ऋणी रहेंगे। अगर कुछ दे देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। पुतना को तो दे दिए मातृगति, मातृगति मतलब माँ जसोदा के बदले में धात्री माँ। धात्री माँ का अर्थ होता है कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ राजभवन में अंतरंग जहाँ रानी रहती है, वहां कुछ स्पेशल दासियां होती हैं जो बाहर काम नहीं करती, वो रानी का टेक केयर करती हैं। तो रानी का सेवा करने वाली वो अंतरंग दासियां रानी के बच्चों का भी पालन करती हैं, बच्चों को नहलाना, कपड़ा पहलाना, पहनाना, खिलाना पिलाना, उसको शयन कराना, सब कुछ। तो ऐसे बच्चे उस दासी माँ को भी माँ कहने लगते हैं। वो छोटे बच्चों को थोड़े पता है कि माँ कौन है, इतना स्नेह देती है, तो उसको माँ ही कहते हैं। इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे एक घटना याद आती है। हमारे यहाँ पहले ठाकुर परिवार, राजपूत परिवार के लोग रहते थे, बहुत धनी लोग, पहले अंग्रेजों के जमाने में बड़े जमींदार थे। तो ऐसे एक जमींदार का बेटा मेरे साथ पढ़ता था, रमेश नाम था। तो एक साथ एक बार खेलते हुए हम लोग जब पांचवी छठवीं कक्षा में होंगे, तो ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे, तब तक एक एकदम साधारण स्त्री जा रही थी, तो पुकारी, रमेश। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ, दौड़ता हुआ गया। मुझे एकदम वो घटना ये पढ़ते ही याद आ जाता है। तो गया मम्मी कहते हुए और बड़ा स्नेह से उस आया, तो उसके सिर पर हाथ रखी एक बार, एकदम आलिंगन करके फिर बड़ा स्नेह से कुछ कहने लगी। मैं भी साथ में खड़ा था। जब वो चली गई तो मैं पूछा, रमेश ये तुम्हारी मम्मी है? मैं जानता था कि वो बहुत बड़े व्यक्ति की लड़का है। तो कहा, हाँ मम्मी है। अरे ये तुम्हारी मम्मी है? मैं दो बार तीन बार पूछा। तो कहा, हाँ मैं इसको मम्मी कहता हूँ। क्यों कहते हो? तो बतलाया कि ये हमारे घर में काम करती है और मैं बचपन से मम्मी, वो कारण नहीं बता पाया, मैं बचपन से इसको मम्मी कहता हूं। तो जब इन श्लोकों को पढ़ा तब तो समझ में आया कि वो ये है धात्री माँ, दासी माँ। तो राजकुमार उसको माँ कह रहा था। तो इस प्रकार माँ यशोदा के बदले में जो स्नेह दे, अपना अपने आलिंगन में लेकर सुलावे, खिलावे, पिलावे, तो भगवान को इतना नजदीक से सेवा करने का अधिकार पुतना को मिला। तो कहते हैं कि जातु धन अपि वह राक्षसी को भी सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, माता की गति मिला। तो कृष्ण भुक्त स्तन छीरा, जो कृष्ण को अपना स्तन पिलाई, ऐसे डायरेक्ट कृष्ण को भी, जो गोपियां उस समय बच्चे वाली थी, स्वाभाविक कृष्ण को गोद में उठा लेती, चुमने लगती, अपना स्तन पकड़वा देती, पीने लगते छोटा कृष्ण, और गायों का दूध भी डायरेक्ट बछड़ों को हटाकर पीने लगते, गायों भी पिलाने लगती, डायरेक्ट मुंह लगाकर पीते थे। और वो तो छोड़िए, एक साल तक गोप बच्चे और बछड़े बनकर अनंत गायों का दूध पिए, लाखों गायों का दूध पिए, और प्रत्येक गोपियों के गोद में एक साल तक रहे। कोई ब्रज की मातृ हृदय गोपी बाकी नहीं जिनके गोद में कृष्ण न सोए हो, और कोई ऐसी गाय नहीं जिनका स्तन न पिए हो। तो इसलिए बहुवचन में कहा गया गायो और मातरः, समस्त गायें और माताओं को जिनका स्तन कृष्ण डायरेक्ट पिए हैं उनको क्या गति प्राप्त होगा, जो पुतना को मातृ गति प्राप्त हुआ। और पुतना को मातृ गति प्राप्त होने के पहले कहते हैं अंगम जस्य समाक्रम्य, जिनके चरणों का स्मरण करने से जगत पूज्य हो जाते हैं ब्रह्मा शिव, और यहाँ पुतना के तो अंग को आलिंगन किए हैं भगवान, अपने हाथ से पकड़े हैं, अपने मुंह से स्तन पिए हैं, अपना पैर से, पूरे शरीर से आलिंगन किए हैं। तो पुतना का शरीर इतना दिव्य हो गया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो पयांसी जासम अपिबत पुत्र स्नेहा स्मृतलयम, भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादाखिल प्रद। तो पुतना के विषय में आगे कह रहे हैं कि हे महाराज, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, वो कैवल्य देने वाले हैं, सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं चू रहा था, उसको भर पेट पान किया है भगवान। भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद्याखिल प्रद, कैवल्य माने मुक्ति, वैकुंठ देने में जो सर्व समर्थ है वही भगवान पुत्र स्नेह स्मृतालय। माता यशोदा जब अपने लाला को देखती थी और दौड़ कर जब कृष्ण आते थे तो उनके अस्तन से दूध चूने लगता था, एकदम चुचुआ जाता, कंचुकी से बाहर चूता हुआ दिखता था। केवल यशोदा और रोहिणी का नहीं, ब्रज के प्रत्येक मातृ हृदय स्त्रियों के स्तन का दूध चूने लगता था। पयांसी जासाम अपिबत पुत्र स्नेहा स्मृतलयम, चुचुआता हुआ दूध को पिलाने वाली गोपियां स्वयं भर पे पान किए। तासाम आवेतम कृष्णे कुर्वती नाम सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसार व ज्ञान संभव। बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं कि इस प्रकार हे राजन, वे गवे और गोपियां जो नित्य निरंतर कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में मानती थी, देखती थी, स्नेह करती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, उनके विषय में क्या कहा, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण संभव है। अज्ञान संभव संसारो अज्ञान संभव, जो व्यक्ति भगवान को भूलकर संसार के विषयों को भोगना चाहता है उसके लिए संसार है, जो अपना चित भगवान में लगा चुका है उसके लिए संसार नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य परम पुरुष भगवान को अपना स्वामी, अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना प्रियतम कोई भी संबंध बना सकता है। यदि कृष्ण से किसी का इनमें किसी रूप में संबंध हो जाए तो समझिए कि इस भौतिक जीवन का अंत हो गया। ये है ज्ञान, भगवान को अपना मानना, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। हे राजन, जो लोग भगवान से आत्मीयता के साथ संबंध रखते हैं उसके लिए संसार संभव नहीं है, वो संसार समाप्त हो जाता है। यह श्लोक इस बात की भी पुष्टि करता है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वे इस जगत में नहीं लौटते। इस संसार में भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा प्रेमी है, यह मेरा मित्र है, किंतु यह संबंध क्षणिक है, माया है। ये अज्ञान संभव, ऐसी चेतना ज्ञान के कारण से होता है, और जब ऐसी चेतना होती है तब ये संसार संभव, ये संसार संभव हो जाता है, फिर आना पड़ता है। तो इस पर बहुत सभी टीकाकार लिखते हैं, प्रभुपाद भी लंबी टीका लिखे हैं। अंत में लिखते हैं कि भगवत धाम जाने का सरलतम उपाय है भगवान से अपना संबंध बनाकर रखना। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, कृष्ण न संसार करो छाड़ी या अनाचार, सारे पाप कर्मों को त्याग कर कृष्ण के परिवार में हो जाओ, उनसे अपना संबंध स्थापित करो, यह है मुक्ति। तो ब्रज के सभी लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इस प्रकार कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौ कस किमितम कुते वेति बदंतो ब्रजमाययु। जब नंद बाबा और गोप लोग आ रहे थे तो उनके नाक में जब पुतना के शरीर का सुगंध पड़ा, धुआं, तो वे लोग विचार कर रहे, ये क्या है, कैसा गंध है, कहां से आ रहा है, इस प्रकार विचार कर रहे हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि नंद बाबा सोच रहे हैं इतना सुंदर गंध कहां से आ रहा है। तो कोई कह रहा है कि स्वर्ग में इंद्र जग कर रहे होंगे, वहां से गंध आ रहा होगा। कहते हैं स्वर्ग का गंध यहां कैसे आएगा, वो तो धुआं का स्वभाव ऊपर जाना है, नीचे थोड़े आएगा। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं, सूतल लोक में बलि महाराज जग कर रहे हैं और उनके जग कुंड से गंध आ रहा है, तरह तरह की उत्प्रेक्षाएं हो रही हैं। किमिदम ते तत्त्व बड़ितम गोपी पुतना आगमनादिकम सुत्वा तम निधनम स्वस्ति शिष्यो चासन सुविस्मिता। तो नंद बाबा बड़े आश्चर्य के साथ आ रहे हैं ब्रज में और बड़े आश्चर्य के साथ कथा सुन रहे हैं, कैसे क्या क्या घटना घटी। तो गोपों ने बतलाया पुतना के आने के तक, आने से प्रारंभ करके पुतना के इस लाश को गिरने तक कैसी कैसी घटना हुई उसको बतलाया गया। पुतना आगमनादिकम कैसे आई और किस प्रकार से व्यवहार की, कितना सुंदर रूप धारण की, जो भी सुबह से आप कथा सुने हैं सारी कथा नंद बाबा सुने। सुत्वा तम निधनम स्वस्ति, बच्चा काल के मुख से बच गया, कुशल पूर्वक बच गया मृत्यु के मुख से, वो राक्षसी पकड़ ली थी। शिशो चासन सुविस्मिता, यह सुनकर नंद बाबा इतना आश्चर्यचकित हुए कि मेरा बच्चा बच गया काल से, बड़े चकित हुए। और नंदा स्वपुत्र मादाय प्रत्यागत मुदारधि मूर्धन्योपाघ्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वह। हे महाराज परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा अपने लाला को गोद में उठा लिए और बार बार सिर सुंग सुंग कर आनंदित होने लगे। मुदन्या उपाघ्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वह, इतना आनंदित हुए हमारा बच्चा काल से बच गया, काल से बच गया, यह बार बार सोच रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वसुदेव जी के बातों को याद करके उनको धन्यवाद दे रहे हैं और भगवान नर नारायण की कृपा से बच्चा बच गया, लक्ष्मी नारायण की कृपा से, नंद बाबा लक्ष्मी नारायण के भक्त थे तो भगवान की कृपा से बच्चा बच गया, यह सोचकर बहुत प्रसन्न है और बच्चे को बार बार गोद में ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे का सिर सूंघने से बच्चा दीर्घायु होता है। माता पिता गुरुजन जब बच्चों को आलिंगित करते हैं और उसका सिर सूंघते हैं तो उसका उम्र बढ़ता है, ये शास्त्रीय विधान है। तो बार बार आलिंगन करके सूंघ रहे हैं, मुदमु उपाध्याय परमा, बड़े आनंद से मुदम परमा मुदम, बड़े आनंद से सिर सूंघ रहे हैं। इस प्रकार बच्चे का मंगल चाह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो उनका तो बच्चा बच गया, बड़े खुश हैं। पुतना को भगवत गति मिल गई, धात्री गति प्राप्त हुई, और हम लोग फोकट में कथा सुन रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ मिलेगा। इस कथा सुबह से इसी में लगे हुए हैं, पुतना मोक्ष, नंद बाबा का बच्चा बचा, जसोदा खुश हैं, ब्रजवासी लोग खुश हैं, उनके लिए तो खुशी का विषय उपस्थित हुआ कि बच्चा राक्षसी से बच गया, पुतना की मुक्ति हो गई, और हम लोगों को क्या मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी अब कह रहे हैं, यह तत् पुतना मोक्षम कृष्ण श्यार्भक मद्भुतम सूर्या सभ्यामर्तो गोविंदे लभते रतिम। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस पुतना मोक्ष की कथा को सुनता है, भगवान के अद्भुत बाल लीला को अगर विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सुनता है, तो उसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। गोविंदे लभते रतिम, तो पुतना को कुछ करना पड़ा, एक्शन करना पड़ा, बेचारी जान भी गवा दी, तब उनको मुक्ति मिला। हम लोग बैठ कर आसानी से इसको सुनकर वही गति प्राप्त कर लेंगे। गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में रति प्राप्त हो जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी भी श्रोताओं को बड़ा उत्साहित कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि दिन भर कथा सुनकर कोई निराश हो जाए कि सबकी गति का तो वर्णन हुआ और हम लोगों के विषय में कुछ कहा नहीं गया। तो सुखदेव गोस्वामी निराश नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बाल लीला को जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, उसे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में रति उत्पन्न हो जाती है। श्रील प्रभुपाद इस पर कुछ कहते हैं, यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय ही अद्भुत है, अद्भुत कथा है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है विशेष रूप से विशेष आश्चर्यजनक घटना। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को लिखा गया, कृष्ण बुक में विस्तार से लिखा गया है, और उसको पढ़ना चाहिए। जो भौतिक जगत में दुखी है, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का यह सबसे बड़ा साधन है। और सबसे बड़ी बात है कि आदि पुरुष गोविंद के प्रति इन कथाओं को पढ़ने सुनने से अनुरक्ति और प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इन ग्रंथों को, कृष्ण बुक को, दशम स्कंद के इन लीलाओं को अवश्य पढ़ना चाहिए, ये प्रभुपाद सलाह दे रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण, जय श्री श्रीमद गौर कृष्णदास प्रभु की जय, श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।